Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 25, शीर्षक है उसका राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, और आज हम पढ़ रहे श्लोक क्रमांक 40। कृपया मेरे पीछे दोहराइए।
पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानां आत्मनश्चः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन्यदगृहाश्रमः। पुत्रदेवर्षि मर्त्यानां भूतानामात्ममनश्चः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन्नन्यदगृहाश्रमः। पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानामात्मनश्चः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद्गृहाश्रमः। क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् गृहाश्रमः।
शब्दार्थ, पितृ पूर्वज पितरगण, देवा देवता, ऋषि ऋषिगण, मर्त्यानां सामान्य मनुष्यों का, भूतानां जीवों का, आत्मनः अपना, च भी, ह निश्चय ही, क्षेम्यं लाभप्रद, वदन्ति कहते हैं, शरणम शरण, भवे भौतिक जगत में, अस्मिन् इस, यत जो, गृहाश्रम गृहस्थ जीवन। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण होते हैं। वह देवताओं का, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि का ऋणी है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को ये ही पूरा करते हैं। देवताओं की कृपा से ही हमें धूप, प्रकाश, जल तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती है। हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर, संपत्ति, बुद्धि, समाज, मित्रता तथा प्यार प्रदान किया है। इसी प्रकार हम राजनीति तथा समाज विज्ञान के लिए सामान्य जनता के ऋणी हैं। हम घोड़े, गाय, गधे, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ते जाते हैं, जिससे उसे ऋण होना होता है। यदि वह उनसे ऋण नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना पड़ता है। गृह में यदि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान ही नहीं पाता कि यदि वह मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह सारे ऋणों से तुरंत ऋण हो जाता है। दुर्भाग्यवश गृहमेदी को कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीर्न कृष्णे परतोस्तो वा मुथो विपद्यत गृहव्रताना। गृहव्रत गृहमेदी ही है। जो विषयी जीवन को सब कुछ मानता है उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। वह या तो अपने आप से या अन्यों से शिक्षा ग्रहण करने करके या फिर उनसे बातें करके विषय वासनाओं में इतना अनुरक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। ओम ज्ञान तिमिरन्तस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और मैं आपके आशीर्वचन की अभिलाषा करता हूँ जिससे मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो ये नारद मुनि पुरंजन महाराज को शिक्षा दे रहे एक कथा के रूप में जो असल में उनके ही जीवन के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत यह आज का श्लोक है। तो इसमें बताया गया है गृहस्थ जीवन का उपयोग। तो गृहस्थ जीवन सबको अच्छा लगता है और इस गृहस्थ जीवन के द्वारा व्यक्ति पितरों देवताओं ऋषियों साधु पुरुषों इन सबकी सेवा कर सकते हैं। तो अभी कलयुग में लोगों को सुविधाएं अच्छी लगती है लेकिन उसके साथ जो आता है उत्तरदायित्व वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन अच्छा बताया गया है लेकिन साथ ही साथ उसका उसके साथ जो आने वाली उत्तरदायित्व है उसके बारे में भी बताया गया। तो कलयुग में लोग सिर्फ पहला भाग पे ध्यान देते हैं और दूसरे भाग के बारे में विचार नहीं करते। जैसे पति पत्नी साथ में आते एक फ्लैट में रहते हैं लेकिन उनको गृहस्थ जीवन का मतलब उतना ही रह गया कि पति पत्नी साथ में रहे, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीजें करनी होती। वो है अपने पिता माता उनका ख्याल रखना, अपने गुरुजनों का ख्याल रखना। ये तो दिखने वाले लोग हैं, माता पिता दिखते हैं, गुरु दिखते, साथ ही साथ जो नहीं दिखते हैं कौन नहीं दिखता है? पितर नहीं दिखते, देवता नहीं दिखते, उनकी भी सेवा करें। तो ये गृहस्थाश्रम का मूलभूत नियम है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम ऋणी हो जाएंगे। तो अभी हम तो इनके तो ऋणी बनते जाते हैं और साथ साथ में कलयुग का कृपा ऐसा है कि लोग जितना उनको प्राप्त हो रहा है धन उसमें वो संतुष्टि नहीं रहते। वो क्या करते, क्रेडिट कार्ड लेके और अपना ऋण बढ़ा देते, फिर क्या होता है, होम लोन रहता है, फिर कार लोन रहता है, फिर अगर आप फ्रिज लेंगे तो उसका भी लोन लेते हैं लोग, ऐसे फिर लोन लोन से थोड़े झगड़े हुए रहते। तो पूरी उनकी आयु है जो भी वो पैसे जमा करते वो सिर्फ ऋण फेरने में चला जाते और वो भी वो फेर नहीं पाते, तो ये ऋण तो दूर की बात रही, ये ऋण के बारे में, ये ऋण के बारे में तो उनको पता ही। तो ये है गृहस्थ आश्रम, जिसमें ऐसे ऋणों से बाहर आने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो वो उस आश्रम का अवहेलना कर, तो ऐसा जो अवहेलना कर रहा है उसे बोला जाता है गृहमेधी, वो व्यक्ति को गृहस्थ नहीं बोला जाता है लेकिन उसे ही बोला जाता है गृहमेधी, जो अपने ही संतुष्टि के लिए जीवन व्यापन करता है। उसे ना देवताओं की पड़ी होती है ना दूसरे किसी व्यक्ति की पड़ी होती है, उसे सिर्फ अपने ही भोगों की बारे में विचार करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको गृहमेधी बोला जाता है। तो प्रहलाद महाराज उन गृहमेधी के बारे में वर्णन करते हैं सातवें स्कंध में। मतीर्ण कृष्णे परतो सुतो वा मिथो विपद्ये गृहव्रतानां अधान्त गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनान। ये जो व्यक्ति है जो गृहमेधी है वो ना उनका मन भगवान के प्रति आकर्षित होता है ना बाकी लोग उनको भगवान की तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं, उनका भी वो सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जो गृहस्थ आश्रम है उसको ही, जो गृह व्रत है, जो इंद्रिय तृप्ति है, उस व्रत को ही वो सर्वोपरि मानते और इस प्रकार वो अंधकार में आगे बढ़ते और उसी तरह से वो पुनः पुनः चर्वित चवना, माने जो पशु योनि में उन्होंने सुख पाया था उसी को वही यहाँ पर दोहराते रहते, आहार निद्रा भयमित, इसके परे वो जाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मनुष्य जीवन में व्यक्तियों को अपना विकास करने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए ये सब आश्रमों का गठन है। तो सब आश्रमों का एक ही सार है, वो है समसिद्धि हरितोषण, माने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, यही सब आश्रमों का मूल है। तो ब्रह्मचारी आश्रम रहे या गृहस्थ आश्रम रहे या वानप्रस्थ रहे या संन्यास रहे या ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब का एक ही सार है, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो मैं जीवन व्यापन कर रहा हूं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे कि नहीं, उसके बारे में उसे विचार करना चाहिए। तो यहां पर बोला गया है अगर किसी ने भगवान की शरण ली तो उसे ये ऋण उसके ऊपर लागू नहीं रहते। तो भागवतम में जो 11वां स्कंद है उसके अंतर्गत एक श्लोक है, देवर्षि भूतात्मनुनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। तो ये जो देवर्षि है या भूत है आत्मा बाकी जो जनता है राजा है पितर है इन सब का जो ऋण है वो किसके ऊपर लागू नहीं होता, जिसने भगवान का शरण लिया है। तो हम देखते हैं कि हालांकि बहुत बार हम मुंबई जाते हैं तो वहां रोड पर टोल टैक्स रहते हैं और टोल टैक्स आने से पहले वहां पर एक बड़ा हरा बोर्ड रहता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये टोल सबके लिए है लेकिन इन लोगों के लिए नहीं। तो कौन लोग है वो? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, ऐसे सब चीजों लोगों के वहां पर नाम लिखे जाते, इनके ऊपर क्या है वो टोल लागू नहीं होता, क्योंकि वो कौन लोग है? वो सरकार के लोग, और बाकी जो सामान्य जनता है उसे टोल भरना पड़ता है। और भक्त भी भगवान के भक्त होने के कारण वो भी कभी कभी इस इस ऋण से मुक्त हो जाते, उसको प्रसाद देकर वो ये ऋण से बाहर चल। तो हम देखते हैं कि भक्त बनने का कितना लाभ है। तो हालांकि जो सच में भगवान का भक्त है उसके ऊपर ये ऋण बिल्कुल नहीं होते। तो हम तो ये छोटा सा टोल के छोटे इतना हमें एहसास होता है, अरे कितना अच्छा है साधु बन गए तो ये टोल मुक्त हो रहे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी का टोल है उससे भी हम मुक्त हो रहे। लेकिन ये बाकी के जो लोग है जो ग्रीन बोर्ड पे लिखे ये लोग सिर्फ इस टोल से मुक्त हो रहे, ये बाकी का टोल उनको भरना पड़ेगा। हालांकि लगता है कि अगर हम भर नहीं रहे, अगर आप भरेंगे नहीं तो क्या होगा, वसूल किया जाएगा, आप टोल मिस करके आगे जाएंगे तो आपके पीछे पुलिस आकर आपको पकड़ के लेके जाएगी। तो इस प्रकार लोग अभी गृहस्थ जीवन जी रहे लेकिन ये कुछ भी टोल नहीं भर रहे और उनको लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान के जो नियम है वो बहुत ही निर्दय, मीन्स निर्दय नहीं, बहुत कठोर है, वो किसी को छोड़ेंगे। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले जो व्यक्ति है उन्हें गृहस्थ जीवनों के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सुख सुविधाओं को वो प्रलोभित हो जाए, ऐसा नहीं, उसके साथ जो आने वाली उत्तरदायित्व है उसको भी उसे निभाना चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उन्हें सुख के साथ बाकी जो फैसिलिटी आ रही है उसके साथ उनके ऊपर उत्तरदायित्व भी आता है। तो गृहस्थ आश्रम में आते हैं दो व्यक्ति, एक है पति और दूसरे है पत्नी। ये वैदिक गृहस्थ आश्रम का डेफिनेशन। अभी कलयुग में गृहस्थ आश्रम के अलग अलग डेफिनेशन गवर्नमेंट ने निकाले, जहां पर पति पति भी ना गृहस्थ रह सकते हैं, पत्नी पत्नी भी गृहस्थ रह सकते, वो अपने आप में डिसाइड करते हैं कि मैं पति हूँ पत्नी हूँ ऐसे। तो वो आजकल का गृहस्थ आश्रम कलयुग का। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसमें पति और पत्नी एक गृहस्थ आश्रम के मूलभूत घटक है, तो उनके ऊपर उत्तरदायित्व है ना। तो पति का उत्तरदायित्व है वो आत्मनिग्रह रहे, वो सही में रहे, और पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति को पति की सेवा करे, उनकी सेवा करे, सबमिसिव रहे। और पति का कर्तव्य है कि वो भगवान और गुरु की शरण ले और वो उनकी सेवा में रत रहे। और पत्नी का कर्तव्य ऐसे जो धार्मिक पति है उसकी वो सेवा करते रहे। तो हम देखते हैं उदाहरण कि जैसे कर्दम मुनि है या महाराज अम्बरीश है या जो भी राजर्षि लोग हैं, वो पूरी तरह से भगवान और भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी पत्नी उनकी ऐसे पति उनकी सेवा में लगे रहते थे जैसे देवावती वगैरह। तो अभी क्या है कलयुग में लोग पति क्या चाहते हैं कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, वो देवावती जैसी होनी चाहिए। लेकिन आप कैसे होने चाहिए, वो मैं कैसा भी रहे लेकिन वो देवावती रहे। और पत्नी को क्या लगता है कि मैं कैसी भी रहे लेकिन मेरा पति कर्दम मुनि या बाकी अम्बरीश महाराज जैसे महान वैष्णव जैसे रहे। तो ऐसे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं रहती और शादी के बाद फिर उनके अंदर बहुत अपेक्षा का भंग हो जाता, और फिर अपेक्षा का भंग होने के बाद वो फिर शादी भी भंग कर देते और वो सोचते कि और कोई मिलेगा अम्बरीश महाराज या और कोई देवावती मिलेगा, इस प्रकार वो ढूंढते रहते। तो जो जैसे भी कोई मिले किसी को उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए और वो ऐसे पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारना चाहिए। अर्धांगिनी माने वो पति की आधा शरीर होता है। जैसे हम देखते हैं कि देवावती वगैरह वो इतनी सेवा करती है अपने पति की, या जो चवन ऋषि है उनकी पत्नी भी, चवन मुनि एकदम जब उनसे शादी हो जाता है उस राज सुकन्या का, तो वो बहुत ही बूढ़े रहते। तब सुकन्या नहीं सोचती कि अरे मैं तो तरुण हूँ, ये क्या बूढ़ा व्यक्ति है, इसके साथ कैसे रहूँगी, ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से उनकी सेवा कर रहे थे। और इतने सेवा से चवन मुनि प्रसन्न हो जाते हैं कि बाद में वो अश्विनी कुमार के द्वारा वो एकदम तरुण बन जाते हैं उनके औसत। तो इस प्रकार जो पत्नी अपनी पति की अच्छे से सेवा कर रहे उसे बोला जाता है अर्धांगिनी। तो ऐसी पत्नी का शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है। ऐसे महान महान जो गांधारी है या जो सब ऐसे सती लोग हैं, जो गांधारी को बोला कि वो सती है, क्यों? क्योंकि जब उसको शादी के बाद पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उसने सोचा कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी होनी चाहिए। अभी लोग बोलते हैं इक्वल राइट चाहिए, तो लोगों स्त्रियों को लगता है मुझे भी आधा घर चाहिए, मुझे भी आधा संपत्ति चाहिए, लेकिन अगर पति का कुछ हो गया तो वो नहीं सोचते कि मैं भी उसके साथ मर जाऊं, या पति कभी मर जाता है तो ऐसा नहीं सोचते कोई कि मैं उनके साथ प्राण त्याग कर। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने जमाने में लोग इतने अपने पति से क्या प्रामाणिक रहती थी कि अगर इनके भर तरुण अवस्था में उनके पति चले जाते हैं तभी भी वो दूसरा विवाह नहीं करते थे, पूरा जीवन ऐसे ही रह जाते थे। लेकिन अभी कलयुग में क्या है, वो जीते जी ही और दो तीन विवाह कर लेते, ये मरा भी नहीं, वो मरने से पहले उनका दूसरा विवाह तीसरा विवाह ऐसा चलता। तो ये उनका अर्धांगिनी का भाग। तो वो अर्धांगिनी नहीं लेकिन वो क्या हो जाते, अर्धांग वायु। अर्धांग वायु माने के पैरालिसिस। तो ये सिर्फ माताओं के बारे में नहीं, पुरुषों के बारे में ऐसे ही है। वो पुरुष लोग भी ऐसे अपनी पत्नी के लिए प्रामाणिक रहना चाहिए। तो अर्धांग वायु मैंने कहा वो पूरा पैरालिस हो जाते, तो इस प्रकार दुख देते। तो हम कुछ अर्धांग वायु केसेस के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर पत्नी जो अर्धांगिनी होनी चाहिए लेकिन उन्होंने क्या किया, पति को अर्धांग वायु दिया। तो एक है रामायण से एक कथा आती है। तो भगवान राम का अभिषेक के बारे में निर्णय लिया गया और पूरे जोर शोर से अयोध्या नगरी का नगरी में हर्षोल्लास से महाराज दशरथ के द्वारा राम भगवान का अभिषेक किया जाने वाला था। तो पूरे सड़क चंदन के पानी से सींचा गया, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े केले के पत्ते के केले के घर लगाए गए, या पूरी नगरी पताकाओं से सुशोभित हो गई और पूरे सामान्य जनता भी नए नए आभूषण वस्त्रों के द्वारा खुद को सजा धजा कर वो महाराज राम को जो अभिषेक है उसके बारे में तैयारी कर रहे थे। तो ऐसा पूरा मंगलमय वातावरण बना हुआ है अयोध्या नगरी में। और वहां पर दशरथ महाराज जिनके तीन पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो कैकेयी सबसे प्यारी थी महाराज दशरथ को। तो वो देखते हैं कि कैकेयी कोप आवास में चली। जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो एक जगह निर्धारित किया गया, ऐसा नहीं कि कहां पर भी गुस्सा दिखाते। तो वो उस जमाने में राजमहल में किसी को गुस्सा आए तो उस रूम में वो चले जाते थे। तो ऐसा उस महल के उस कक्ष में कैकेयी चली गई। तो फिर दशरथ महाराज को पता चला कि कैकेयी को गुस्सा आया है या उसको कुछ बुरा लगा है। तो महाराज दशरथ उन्हें मनाने के लिए उस कक्ष में जाते हैं और जाने के बाद वो देखते हैं कि पूरे कैके ने बाल सब खोल के रखे और मलिन वस्त्रों को पहना है और इस प्रकार वो जमीन पे बैठी है। तो ये सब देखने के बाद महाराज दशरथ को लगता है कि क्या गलती हो गया, कैके ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे। तो उन्हें मनाने के लिए महाराज दशरथ बोलते हैं, हे देवी, मैं राम का शपथ लेता हूं, मेरा शपथ लेता हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, तुम्हारा ये कोप मैं नष्ट करना चाहता हूं, तुम्हें पृथ्वी पर जो चाहिए या देवताओं के पास जो चाहिए वो कुछ भी चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उस प्रकार महाराज दशरथ उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, बहुत उनको प्रशंसा वगैरह करने के बाद वो बोलते हैं कि मांगो देवी, कुछ आपको जो वर चाहिए मांगो। तो फिर ऐसा परिस्थिति निर्माण होने के बाद कैकेयी उन्हें बताती है कि महाराज जी, जब आप देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे, या देवता नहीं, दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे देवता की तरफ से, तब मैंने आपको एक बार बचाया था और आपने उस समय मुझे बोला था कि मैं आपको वर दूंगा, और मैंने बोला था कि वो वर मैं आपको उचित समय आने के बाद मांगूंगी, तो अभी मैं आपको ये वर मांग रही हूं। तो आप अच्छे रघुकुल में आए हैं, जिस कुल का इतना गौरव है कि जहां पर प्राण जाते हैं तभी भी वो अपना वचन निभाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये दो वर की याचना करती हूं। तो पहला वर ये है कि भरत का राजाभिषेक हो, और दूसरा वर है कि 14 साल के लिए राम को आप दंडकारण्य में भेज दें वनवास के लिए। तो जब ऐसा सुनने के बाद महाराज दशरथ का पूरा हृदय टूट जाता है, ऐसा मानो कि किसी इंद्र के व्रत से किसी मेरु मांदा पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो ये वज्राघात के जैसा कैकेयी के दुर्वचन सुनकर महाराज एकदम लड़खड़ा जाते, वो स्तब्ध हो जाते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है, और इस पर पूरी तरह से अचेतन हो जाते। और ऐसे अचेतन अवस्था में उनको कुछ समझता नहीं, फिर बाद में जब उनको चेतना आती है तो वो कैकेयी को बोलते हैं, वो बोलते हैं, कैकेयी मैं मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मेरा सिर तुम्हारे पैर पर रखता हूँ, तो ये बड़ी बात है। ये कौन बोल रहा है? दशरथ जी, जो 10 दिशाओं में अपने शत्रु से युद्ध कर सकते, इतने परम शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन वो अभी इतने असहाय बन गए कि वो बोल रहे कि मैं तुम्हारे पैर पड़ करता हूँ, ओ महारानी आप ये वचन वापस लो। तभी भी हम देखते हैं कि कैकेयी बिल्कुल मानती नहीं, हालांकि उनके पति उनके पैर पड़ रहे, उनके हाथ जोड़कर उनको इतना विनती कर रहे। तो इस समय जो कैकेयी जो स्त्री है जिनका हृदय इतना कोमल होता है, वो एकदम कठोर हो बन गए, और वो महाराज दशरथ को दुख में डाल देती। तो महाराज दशरथ बोलते हैं कि मैं राम के सिवा दूसरा कुछ जानता नहीं, अगर राम को तुम वनवास में भेजोगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे राम के साथ, और राम ये पूरे अयोध्या नगरी के प्राण है, तो अगर तुम राम को निकालोगे तो ये नगर भी पूरा उद्विग्न हो जाएगा, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ऐसे बताने के बाद भी कैकेयी बिल्कुल मानती नहीं, तो ये कभी कभी होता है गृहस्थाश्रम, ऐसा दुख भी आता है। और दूसरा है उदाहरण है महाराज पुरवा, जो बड़े दिग्विजयी है, इतने पराक्रमी थे कि देवता लोग उनको मदद के लिए बुलाते थे, अगर देवताओं का युद्ध चल रहा है तो कहां से लोग बुलाते थे, इस धरातल से महाराज पुरवा को बुलाते थे, मीन्स इतने सामर्थ्यशाली थे। और ऐसे सामर्थ्यशाली महाराज पुरवा के प्रेम में उर्वशी गिर गए थे, और उर्वशी को जब 1 साल के लिए धरती पे भेजा था तब उर्वशी ने महाराज पुरवा के सामने आकर उनको विनती किया था कि आप मेरा वरण कीजिए, और उस समय उसने 3 चीजों के बारे में तो उन्होंने उस समय 3 वचनों का वचन मांगे थे कि पहला कि मुझे जो भी खाने को बनाया जाए वो सब घी में बने, और दूसरा कि आप कभी भी मेरे सामने निर्वस्त्र ना रहे, और तीसरा ये जो मेरे दो बच्चे दो जो ये है मेम उनका आप ख्याल रखें। तो इस प्रकार पूरी तरह से पुरवा महाराज उनसे आकर्षित हो गए, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं ये सब नियमों का पालन करूंगा, है ना, क्योंकि राजा है तो उनको घी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, घी तो मिलता था। कि आज के जमाने में घी पता ही नहीं लोगों को क्या होता है, तो वो नियम तो पालन हो रहा था। और साथ ही साथ महाराज उर्वशी का ख्याल रख रहे थे। और एक साल के बाद जब इंद्र को पता चला, अरे अपने राजदरबार में एक व्यक्ति मिसिंग, तो उर्वशी का उनको याद आता है कि अरे ये नहीं है, तो फिर वो देवता लोगों को भेजते कि जाओ उर्वशी को लेकर। और उस समय फिर देवता लोग आते हैं, और देवता लोग आने के बाद क्या करते हैं, वो जो उर्वशी के दो मेम थे जो मेंढी के बच्चे होते उनको लेके जाते हैं, तब वो आवाज करने लगते हैं। तब उर्वशी बोलती है राजा को कि क्या आप एक स्त्री के जैसे सो रहे हैं यहाँ पर, मेरे बच्चे को लेके जा रहे हैं वो देवता लोग, और आप एक स्त्री के जैसे कंकन पहनकर यहाँ पर मेरे सामने सो रहे हैं। तो इस प्रकार एकदम उनकी घृणा करती। और तो महाराज कुरावा को एकदम बिजली जैसी गिरती है, वैसे ही वचन गिरते। और वो फिर बिल्कुल वो देखते परवाह नहीं करते कि उन्होंने कपड़े पहने नहीं पहने, वो उसी निर्वस्थ आवास में वो बच्चों को बछड़े को ये मेम को लाने के लिए जाते, और उनके शौर्य और शक्ति से वो उनको लेके भी आते। लेकिन उर्वशी तब बोलती है कि आपने नियम को तोड़ दिए, आपने मेरे सामने निर्वस्थ, आप मेरे सामने निर्वस्थ, तो मैं आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो इस प्रकार वो निर्दय अवस्था से वो उर्वशी उन्हें छोड़कर जाती है। और यहाँ पर महाराज पुरवा जो पूरे सम्राट है, दशों दिशाओं के जो अधिपति है, वो गिड़गिड़ाने लगते, उनके पैर पार करने लगते, बोलते वो स्त्री मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके सिवा कोई नहीं जानता। इस प्रकार वो वन में पागल के जैसा घूमते रहते। तो ये अवस्था उनकी ये माता ये स्त्री ने कर दी। तो ये रिस्क है गृहस्थ आश्रम का। अगर आप कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ज्यादा आकर्षित हो जाता है, पूरी सुध-बुध खो बैठता है, तो उसका इस प्रकार से हाल हो जाता है। तो ये गृहमेदी जीवन है। लेकिन जो असली गृहस्थ है उसमें क्या है, पति पत्नी को भगवान की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और पत्नी पति को भगवान की तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। वो एक दूसरे को आकर्षित होने का प्रयत्न नहीं करते। तो असली गृहस्थ आश्रम का जो मतलब है, उसमें पति पत्नी साथ में आकर दोनों प्रयास करते हैं भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। तो ये अगर कोई कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ऐसे गृहस्थ भी है जहां पर इतने बड़े बड़े उन्होंने पराक्रम किए है और भक्ति की है, कि उनकी प्रशंसा पूरे भागवतम में की गई है। जैसे अम्बरीश महाराज है ना, तो अम्बरीश महाराज इतने अच्छे गृहस्थ से गृहस्थ थे, वो इतने अच्छे गृहस्थ नियमों का पालन कर रहे थे कि वो अपने अतिथि को खिलाए बिना कुछ खाते नहीं थे। और एक बार उन्होंने अपनी जनता के लिए उपवास रखा था एक साल का, और वो जब उपवास तोड़ने का टाइम आया तो वहां पर दुर्वास मुनि आ गए। और दुर्वास मुनि आकर बोलते हैं कि मैं अभी यमुना में जाके स्नान करके आ रहा हूं, तब तक आप मेरे भोजन की व्यवस्था करें। और उसी समय वो पारना का टाइम हो गया था, तो अम्बरीश महाराज ने विचार किया अभी मैं अतिथि को खिलाए बिना मैं कैसे खाऊं, और ये पारना अगर मैं तोड़ूंगा नहीं तो जिस कारण के लिए मैंने ये व्रत किया है अपनी जनता के लिए, उसका उसे फल नहीं मिलेगा। सो ऐसा सोचते हुए उन्होंने पानी पिया, और ये पानी पीने के बाद उधर दुर्वास मुनि को पता चल गया, जो नदी में नहा रहे थे उनको पता चला कि महाराज अम्बरीश ने पानी पिया। तो वो गुस्से से वहां से दौड़ते हुए आए, उसके पहले भी आ सकते थे लेकिन नहीं, वो वेट कर रहे थे। तो वो गुस्से से आकर बोलते हैं क्या तुम राजा बनकर इतने घमंडी हो गए हो, तुम्हें साधु और अतिथियों का सत्कार करना था, और इतना गुस्सा होकर वो क्या करते, अपने शरीर के पाल निकालकर जमीन पर पटकते। और उस समय वहां पर एक राक्षस जन्म लेता है, और वो राक्षस अम्बरीश महाराज के प्रति उनके ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन अम्बरीश महाराज इतने परम भक्त थे कि वो शांति से वहां पर खड़े रहे, उनका एक मिलीमीटर भी उन्होंने अपना स्थान से पदच्युत नहीं, वो ऐसे ही वहां पर खड़े रहे। तो वहां पर कौन आया? फिर सुदर्शन आया, जो भक्तों की सदैव रक्षा करता है। वो सुदर्शन वहां पर आया है और वो फिर दुर्वास मुनि के पीछे लगा है। तो यहां पर देखिए गृहस्थ कौन है? महाराज अम्बरीश। और बड़े तपस्वी योगी कौन है? दुर्वास मुनि। लेकिन उनके सामने भी एक गृहस्थ महान है, ये तपस्वी योगी या जो भी है उनके सामने भी ये गृहस्थ महान है, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त है। तो इसीलिए कोई ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने या वनप्रस्थ बने संन्यास बने, अगर वो भगवान का भक्त नहीं तो वो कुछ फायदेगा नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है तो किसी भी आश्रम में रहे वो महान है। तो इसलिए तुकाराम महाराज बोलते हैं, अमा विष्णु दासा सर्वकाल शुभ दिशा। तो जो भगवान के विष्णु के दास है उनके लिए क्या है? सब परिस्थिति, सब समय और सब दिशाएं वो शुभ है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनकर जिसे भी आश्रम में है वो उसका कल्याण ही होगा। तो इसलिए जो आश्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया है उसका एक महम हिस्सा है कि वो भगवान के भक्त है, तभी वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के लाभ उठा सकता है। तो ऐसे जो महान गृहस्थ है उसमें तुकाराम महाराज भी है, जिन्होंने अपने साधना के द्वारा इतना भगवान की भक्ति करते रहे। वो इतने उच्च कोटि के भक्त है कि उनकी पत्नी उनको बिल्कुल मदद नहीं करती थी, तभी भी वो भक्ति में टिके रहे। ऐसा नहीं कि उनको अर्धांगवायु आया, ऐसा नहीं, वो इतने भक्ति में जुड़े हुए थे कि वो पत्नी को भी उसको कल्याण करने की उनके अंदर क्षमता थी। तो तुकाराम महाराज ने बताया है कि कैसे भगवान की भक्ति हम करें, तो उसके बारे में एक अभंग है, वो लेकर मैं यहाँ विराम दूंगा। तो यहाँ पर वो विट्ठल जी का गुणगान करते हैं। तुझ ऐसा कोनी न देखे उदार, अभयदान शूर पांडुरंग, शरण येति त्यांचे न विचारिसी दोष, न मागता त्यास हडळ देसी, धावसी अडनी ऐकुनिया धावा, कैवारे देवा भक्ता चिया, दोष त्याचे जाळी कल्पकोटीवरी, नामा साट हरी आपुलिया, तुका मनी तुझ वानु कैशा परी, एक मुख हरी आयुष्य थोड़े। तुकाराम महाराज बोल रहे, भगवान मैं आपके गुण गा नहीं सकता, इतने आपके गुण है कि वो गाते गाते ये जीवन भी कम है। तो कैसे भगवान के गुण है? तो भगवान सबसे उदार है, अभय दानशूर पांडुरंग। तो भगवान इतने दानशूर है कि कोई उनका शरण लेता है तो उसके वो दोष के बारे में पूछते नहीं, वो उसके दोष के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको ऐसा स्थान देते हैं कि जहां से उसे कोई हिला नहीं सकता। तो इसका उदाहरण है, कौन है उदाहरण? पूतना। पूतना भगवान को मारने के लिए आ रही थी, उनको विष पिलाने चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने उसका विष पिलाने का दोष नहीं देखा, लेकिन भगवान ने उसके अंदर जो दूध पिलाने का, जो भक्ति करने का भाव है उसको देखकर भगवान ने उसे क्या दिया? अपनी माँ बनाई उन्होंने, धात्री बनाई गोलोक में। तो ये है भगवान का भाव। और दूसरा क्या है? धावसी अड़नी ऐकुनिया धावा। तो भगवान अपने भक्त जब भी तकलीफ में जाते हैं और उनको जोर से पुकारते हैं तो भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। और क्या बोल रहे हैं दूसरा? दोष त्यांचे जाळी कल्प कोटीवरी। अगर वो भक्त के अंदर करोड़ों करोड़ों भी दोष रहे तो भी भगवान उसको जला देते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से। तो ये ऐसे भगवान का शरण हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। तो अगर हम अच्छी तरह से समर्पित रहे, कौन से भी आश्रम में रहे, तभी अगर महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान की सेवा करें, समसिद्धि हरितोषण, यही अपने भागवत धर्म का शिक्षण है। कि अगर हम किसी भी आश्रम में रहे, अगर हम भगवान की शरण ले, उनकी सेवा करें, तो हम ये सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे और जो भी हमारे साथ है उनका भी हम कल्याण कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।